ओम शांति। बाबा ने आज सवेरे की मुरलियों में माताओं को कहा गौ है, गौ माता है, जिसकी पूंछ पकड़ करके सभी इस कलियुगी दुनिया से पार सतयुगी दुनिया में पहुंच जाएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। कितना सुंदर रहस्य आज बाबा ने मुरली के अंदर सुनाया। बाकी तो यही कहूंगी कि आप सबकी तपस्या की अग्नि ने बादल को भी पिघला दिया है ना, गर्मी में राहत मिल गई आप सबको। लेकिन बाबा जैसे कहते हैं कि हर कदम संभाल करके उठाना है, तो स्थूल में भी जब चलो तो हर कदम संभाल करके उठाना, ताकि कहीं स्लिप न हो जाए। आज का विषय है दुआओं का महत्व। संगम युग वरदानी युग है और इस वरदानी युग में बाबा का हर बच्चा वरदानी आत्मा है, वरदानी मूरत है, जिसकी झोली स्वयं भगवान ने वरदानों से भरपूर कर दिया, ताकि वो अनेकों की झोली को भी उन वरदानों से सींचे। आवाज तो क्लियर है पीछे तक? आवाज क्लियर है? अच्छा, तो इसीलिए दुआओं का महत्व ब्राह्मण जीवन में बहुत है, क्योंकि बड़े से बड़ी समस्या को क्रॉस करना हो तो उसके लिए दुआओं के जमा का खाता होना जरूरी है। वैसे बाबा हमेशा अव्यक्त मुरलियों में तीन जमा के खाते की बात करते आए। पहला है स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध को जमा करना, तो प्रारब्ध का खाता। दूसरा है कि सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना, और तीसरा है कि किसी को सुख देकर दुआओं का खाता जमा करना। स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जो है वो खाता कहाँ काम आता है? वो खाता सतयुग त्रेता युग में काम आता है। उससे हमारे भविष्य 21 जन्म की प्रारब्ध फाइनल होती है कि कौन सी सीट को, कौन से स्तर तक हम पहुंचे उसको फाइनल करता है। जो पुण्य का खाता है वो पुण्य का खाता हमें द्वापर कलयुग में काम आता है, क्योंकि द्वापर कलयुग के जन्मों की क्वालिटी, जितना पुण्य का खाता जमा है उसी से हम अनुभव करेंगे, उसी से वो जन्म को हम महसूस करेंगे। जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि जो पुण्य का कार्य करता है अच्छे घर में जाकर के जन्म लेता है, तो द्वापर कलयुग के अच्छे जन्म ये पुण्य के खाते से प्राप्त होता है। परंतु दुआओं का खाता कहाँ काम आता है? दुआओं का खाता संगम युग में काम आता है। संगम युग में भी कब? तो जो अंतिम समय की परीक्षाएं कि जब चारों ओर से पेपर एक साथ में आएंगे, बड़े से बड़े पेपर आएंगे, बड़े बड़ी समस्याएं आएंगी, जिसके लिए बाबा कई बार कहते हैं दुख के पहाड़ गिरने, उस समय को क्रॉस करने के लिए दुआओं का खाता चाहिए। क्योंकि दुआएं जैसे मक्खन से बाल निकाल देती है, या पानी पर लकीर खींचने वाला अनुभव, पानी पर कोई लकीर खींचे एक सेकंड भी नहीं रहता है उसका निशान, ठीक इसी तरह जीवन में अगर दुआएं हैं तो जो अंतिम समय के पेपर आएंगे वो ऐसे हट जाएंगे जैसे मक्खन से बाल निकल गया। हमें कोई भी प्रकार की परेशानी क्रिएट नहीं कर पाएगा या हमारी अवस्था को डावाडोल नहीं कर सकता है। दुआएं जैसे लिफ्ट का काम करती है कि धरनी से हमें ऊपर उठा देती, लिफ्ट में जैसे सहजता से बिना मेहनत के ऊपर चढ़ गए, दुआएं ये कार्य करती है, लिफ्ट में बैठने का अनुभव कराती है। बड़े से बड़ी परीक्षा में भी दुआएं प्रसन्नता का अनुभव कराएगी, खुशी का अनुभव कराएगी और आत्मसंतुष्टि को अनुभव कराएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में दुआएं बहुत आवश्यक है। आदरणीय दादी जानकी हमेशा ये बात कहती है कि ये सीजन है दुआएं देने की, दुआएं लेने की। जो दूसरों को दुआ दे सकता है वही दुआओं को प्राप्त कर सकता है। अगर सीजन में बीज नहीं बोया तो बाद में उसका फल कैसे खाएंगे? आवश्यकता के समय पर जब दुआएं चाहिए या दुआएं जो कार्य करती है उसको सहजता से अनुभव कैसे कर पाएंगे? जिसके पास दुआओं का खाता है वो अंदर से भरपूरता का अनुभव करेगा। कोई भी प्रकार की चाहिए की चाह उसके अंदर नहीं हो। ये है दुआओं का महत्व। कई बार हम देखते हैं किसी को बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट को देख करके लोग यही कहते हैं इसमें कोई बचा नहीं होगा, परंतु अंदर बैठे हुए लोग उनको एक खरोच तक नहीं आती है और बाहर आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दुआओं ने बचाया, एक खरोच तक आने नहीं दी। यानी ड्रामा में जो भावी थी, ड्रामा में जो एक्सीडेंट का पार्ट था, जो होनी थी वो हुई, उसको कोई टाल नहीं सकता है। कई लोग कहते हैं ड्रामा में होगा एक्सीडेंट, होना तो होगा, लेकिन ड्रामा में एक्सीडेंट की भावी जो थी वो हुई, लेकिन दुआओं का खाता अगर है तो वो एक्सीडेंट में भी एक खरोच तक नहीं आएगी, ऐसे उभर के बाहर आ जाएंगे। और जिसके पास दुआओं का खाता नहीं होगा उसको क्या होगा, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, बहुत भोगना का अनुभव कराएगा। इसलिए जीवन में अगर हर परिस्थिति में परिस्थिति आएगी वो निश्चित है ड्रामा के अंदर, लेकिन उस परिस्थिति में दुआओं की शक्ति हमें अंदर से हलचल में नहीं आने देगी, हिलाएगी नहीं हमको, अचल अडोल रखेगी। इसीलिए ड्रामा की भावी निश्चित है, वो आएगी, लेकिन दुआओं की शक्ति हमें हर परिस्थिति में सहजता से बाहर निकाल लेगी। इसलिए दुआएं बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतिम समय के पेपर चारों ओर से एक साथ आएंगे। चारों ओर माना खुद से भी पेपर आएंगे, कौन से खुद से पेपर कौन से आएंगे, अपने ही स्वभाव संस्कार जो विस्फोट होंगे और बाहर निकलेंगे। परिवार से, चाहे लौकिक अलौकिक समाज, उनसे भी पेपर आएंगे, साधन सुविधाओं से पेपर आएंगे, और परिस्थिति समस्याओं से पेपर आएंगे। तो ये चारों ओर से पेपर आएंगे, चाहे व्यक्ति हो, साधन हो, या परिस्थिति हो, या खुद के संस्कार हो, ये चारों ओर से पेपर आएंगे। और अगर सारे पेपर एक साथ आए तो कितनी दुआओं की शक्ति चाहिए, कितना दुआओं का खाता जमा होना चाहिए जो वो सारे पेपरों को एक साथ निरसंकल्प स्थिति में स्थित होकर के उसको पार कर सके। नहीं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर दुआओं का खाता नहीं है योगी नहीं लगेगा बाबा के साथ, और आने वाले समय में या भविष्य के लिए बाबा कहते कि अंतिम समय की स्थिति पर भविष्य प्रारब्ध फिक्स होगा कि आप रॉयल फैमिली में जाने वाले हैं, 108 की माला में जाने वाले हैं, 16108 की माला में जाने वाले हैं, या दास दासियों की माला में जाने वाले, किस माला में जाने वाले। अंतिम समय की स्थिति नंबर को फाइनल करेगी, और अंतिम समय अगर योग ही न लगे, इतना हलचल में आ गए और ऐसे हलचल में शरीर छूटा तो क्या नंबर मिलेगा, सोच सकते हैं क्या नंबर मिलेगा। इसीलिए दुआओं की शक्ति होगी तो अंतिम समय के सारे पेपर को भी अचल अडोल स्थिति में स्थित होकर के पार कर सके। और दुआएं कैसे मिलेगी। दुआओं का महत्व तो समझा, परंतु दुआएं किसको मिलती है, दुआओं को प्राप्त करने का आधार क्या है, बहुत सारी बातें हैं जिसके माध्यम से दुआएं मिल सकती हैं। सबसे पहली बात नोट करते जाओ भले, सबसे पहली बात दुआएं उसको मिलती है जो बाबा हमेशा कहते हैं जो बैलेंस से चलते हैं। बैलेंस से ब्लेसिंग्स मिलती है, बाबा यही कहते हैं ना, बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के योग्य बनो। तो बैलेंस किन चीजों का बैलेंस करना है, व्यवहार और परमार्थ, लौकिक और अलौकिक, इसका बैलेंस करना है। स्वपुरुषार्थ और सेवा बैलेंस करना है। लव एंड लॉ का बैलेंस करना है। जीवन में बहुत सारे बैलेंस है। ब्रह्मा बाबा का जीवन बैलेंस का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। बाबा की वो किताब बनी है ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, उसमें एक एक बैलेंस बताया है। और वो सारे बैलेंस हमें भी बाप समान अगर बनना है तो उन बैलेंस को अपने जीवन के अंदर ले आना है। व्यवहार और परमार्थ दोनों का बैलेंस करना है। लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंस से ही सबकी ब्लेसिंग्स, सबकी दुआएं अपने आप मिलती है। तो पहला आधार है बैलेंस। दूसरा आधार कि जो सुपात्र बनता है उसको दुआएं मिलती है। और सुपात्र कैसे बनता है, मम्मा सुपात्र थी। हर कोई यही सर्टिफिकेट देते रहे मम्मा को कि मम्मा सुपात्र आत्मा थी। तो सुपात्र कैसे बने, हाजी करने से, आज्ञाकारी बनने से दुआएं प्राप्त होती है। मम्मा के जीवन के कई ऐसे मिसाल मिलेंगे, कई महीने भाई सुनाते हैं आपको क्लास कराते समय, खास करके जिन्होंने मम्मा बाबा की पालना ली हुई है, कि बाबा ने कोई भी कार्य अगर मम्मा से कहा तो मम्मा ने जी हाँ, जी बाबा, जी बाबा करके, आज्ञाकारी बन करके हर कार्य को, मैं कैसे करूंगी, मेरे से तो नहीं होगा, ये कोई टाइम है कहने का, कभी कोई शिकायत नहीं। जो ऐसा सुपात्र बनता है उसको दुआएं अपने आप मिलती है। तीसरा, जो हिम्मत रख करके बड़े से बड़ा कार्य करने की हिम्मत दिखा करके आगे बढ़ते हैं, तो हिम्मत भी अनेकों की दुआओं को प्राप्त कराता है। क्योंकि आज की दुनिया के अंदर कई आत्माएं बहुत कमजोर है, जिसके पास अपनी हिम्मत नहीं है कुछ करने की, आगे बढ़ने की, कदम उठाने की, तो ऐसी आत्माओं को भी जो हिम्मत का सहारा देते वो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। तो जो हिम्मतवान है, एक बल, एक भरोसे के साथ चलता है, एक बाबा का बल, एक बाबा भरोसा हमारा, हजार भुजा वाला बाबा हमारे साथ है, और इस तरह के निश्चय बुद्धि हो करके, हिम्मत रख करके, असंभव को संभव करके दिखा देते हैं, उसको अनेकों की दुआएं मिल जाती है कि लोग उसको कहेंगे थैंक्स। जब कोई आप आपको कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से जब कहते बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्य हमें करके दे दिया, यही दुआएं हैं। जब दिल से कोई धन्यवाद करता है, ये धन्यवाद दुआओं का रूप ले लेता है। इसलिए ऐसे कर्म करें हम, जब किसको सुख मिलता है हमारे द्वारा, तो वो दिल से कहेगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये दुआएं समझ लो, ये दुआएं मिली उस समय ये नहीं कहना नहीं 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 हमने कुछ नहीं किया, उस समय ये कहो बाबा ने कराया, हमने कुछ नहीं किया। ये नहीं शब्द नेगेटिव नहीं बोलना है, नहीं नहीं हमें धन्यवाद नहीं दो, नहीं। क्यों? मुझे याद आता है कि एक बार वो लता मंगेशकर जब छोटे थे, जब गीत गाना आरंभ किया था, वो अपना अनुभव सुना रही थी कहीं पर, कोई गैदरिंग था शायद, उनका 75 साल पूरे हुए जब गाने के, तो वो अपना अनुभव सुना रही थी 50 साल या 75 साल। तो उस समय हमें भी वहां पर जाने का मौका मिला था, तो उस समय उसने अपने अनुभव में सुनाया कि जब मैंने गाना आरंभ किया था और पहला गाना ही गाया था कि एक दूसरी गायक जो पुरानी थी उस समय, तो उसने आकर के लता मंगेशकर को कहा, बेटी बहुत सुंदर आवाज है तेरा, बहुत आगे जाएगी। तो उस समय लता मंगेशकर ने कहा, नहीं नहीं मेरा आवाज तो आपके जैसा नहीं है, मैं कैसे आपके जैसा गा सकती हूँ। स्वाभाविक है, वो बड़ी थी, इतनी सीनियर सिंगर थी, तो उसने सहजता से कह दिया, नहीं नहीं मैं कहाँ इतना अच्छा गाती हूँ, आपके जैसा तो नहीं गा सकती। तब उस बहन ने कहा उसको कि बेटा जब कोई आपकी योग्यता आपकी बात को तारीफ करे तो नहीं 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 करो, यानी नहीं नहीं करने से हम अपने सामने नेगेटिविटी का आवरण ले आते, तो हम अपनी प्रगति में विघ्न क्रिएट करते हैं। इसलिए कोई तारीफ करे तो देखो अज्ञानी है, जिसमें ज्ञान का बेस नहीं है। फिर भी उस बहन ने लता मंगेशकर को कहा, जब कोई तारीफ करे तो कहो अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्रिया है कि उसने ये योग्यता मुझे दी। तो इसी तरह आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे और सहजता से जिसको भी फायदा मिला, सुख मिला, जिसको कुछ प्राप्ति हुई, वो आपकी तारीफ जरूर करेंगे। हाँ? तो जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, किसी को कोई प्राप्ति हुई, किसी को कोई सुख मिला, तो वो आपकी तारीफ तो जरूर करेंगे। लेकिन उस समय ये नहीं कहो, नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये नहीं नहीं कह करके हम अपने आगे नेगेटिविटी का, नकारात्मक वाइब्रेशन को, वाइब्रेशन की चद्दर फैला देते, वो हमारी प्रगति को रोकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जब भी आपकी कोई विशेषता हो और उस विशेषता का प्रयोग करके किसी को सुख देते हो और उस समय कोई आपकी तारीफ करे तो कहो बाबा की देन है, बाबा को ले आओ। और बाबा को जब उसने आपका धन्यवाद किया, उसी वक्त आप दिल से बाबा का शुक्रिया करो कि बाबा थैंक्स आपका, जो आपने मुझे निमित्त बनाया इस सेवा के कार्य के लिए या इस आत्मा को ये सुख देने के लिए, तो उसी वक्त वो तारीफ बाबा को अर्पित कर दो। ये है समर्पण बुद्धि, कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे हम उस शुक्रिया को बाबा को जब अर्पित कर देते हैं कि बाबा थैंक्स आपका जो आपने मुझे ऐसा योग्य बनाया या निमित्त बनाया जो मैं ये सेवा कर सकी, बाबा को अर्पित करो। नाना नहीं करना, बाबा को अर्पित करो। और सामने वाले को भी ये याद दिलाओ कि करण करावनहार बाबा है जिसने कार्य कराया। तो जब करण करावनहार बाबा को सामने ले आएंगे तो अहंकार का भाव नहीं आएगा, मैंने किया, ये मैं की बलि चढ़ा देते हैं। और जिसने भी मैं की बलि चढ़ा दी उसी वक्त वो दुआओं के पात्र है, उसको सहजता से भगवान से भी दुआएं प्राप्त हो जाती है। हाँ, तो पहली बात, बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग्स मिलेगा। दूसरा, आज्ञाकारी बन करके सुपात्र बनने से ब्लेसिंग्स मिलेगा। और तीसरा, हिम्मत रखते हुए कोई असंभव कार्य को संभव कर दिया तो ब्लेसिंग्स मिलेगा, दुआएं मिलेगी। चौथा, आवश्यकता के समय पर मददगार बन जाना। वैसे तो कोई भी सेवा करते रहते लेकिन आवश्यकता है और उस समय कोई नहीं है और उस समय आप मददगार बन गए सेवा में, वो आपको ब्लेसिंग्स दिलाता है, पात्र बना देता है। क्योंकि मान लो कि कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई आना जाना नहीं कर सकते हैं, आप सेंटर के बाजू में रह रहे हैं और उसी समय सेंटर पर अगर कुछ ऐसा परिस्थिति आ गई और आप जाके खड़े हो गए, आवश्यकता के समय पर मददगार बन गए, तो सबकी ब्लेसिंग्स अपने आप मिल जाएगी। बाकी तो सेवा हर कोई करता ही है, लेकिन जब कोई न हो उस समय आप भी सोचो अरे मेरे को सारा करना पड़ेगा, और आप भी कोई ना कोई बहाना करके निकल जाओ तो ब्लेसिंग्स मिलेगी। लेकिन जब कोई ना हो और उस समय आप खड़े हो गए, ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, नहीं, आप खड़े हो गए तो उस समय बाबा की ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती है। भाई बहनों की तो मिलती ही है, लेकिन भगवान आपको उस समय दुआओं से भरता है। तो आवश्यकता के समय पर मददगार बन जाना, खुदाई खिदमतगार बन जाना, वो ब्लेसिंग्स के पात्र बना देते हैं। पांचवी बात, कि जब हम किसी भटकती आत्मा को, यानी जो बेचारे दुनिया के अंदर कई आत्माएं भटक रही है, कई मंदिरों में जा रही, यहां जा रही, वहां जा रही, इतने भटक रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं और उसको ठिकाना दिखा दिया कि तुम बाबा के घर जाओ, तुम्हें तुम्हारे मन के सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि किसी को सही रास्ता दिखा देना भी पुण्य का कार्य है, तो ऐसी आत्माएं जो अज्ञानता के कारण भटक रही है, दुखी हो रही है, परवश आत्माएं हैं, पराधीन आत्माएं हैं, उसको ठिकाना दे दिखा दिया कि यहां चले जाओ, तुम्हारे सब मन का प्रश्न जो है उसका जवाब भी मिल जाएगा, उसको खुशी मिल जाए। तो जब आप किसी को खुशी देते हैं तो उससे बड़ी दुआएं और कोई नहीं होती है। तो खुशी जहां प्राप्त करा दो आप, किसी को, किसी दुखी आत्मा को खुशी मिल जाए आपके द्वारा, सहारा मिल जाए, आवश्यकता पर उसको सही गाइडेंस मिल जाए आपके द्वारा, तो दुआओं का पात्र बना देता है आपको। तो इसीलिए ऐसी आत्माओं को खुशी देना इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। ये दुआएं हमें सहज कमाने का आधार बना देती है। दूसरा, दुआएं कमाने के लिए सहजता से के जब बड़ी दिल रख करके हम सेवा करते हैं। कई होते हैं कि भाई ठीक है, कर दिया, हमारी जितनी कैपेसिटी है उतना कर दिया। और एक है बड़े दिल रखना, बड़े कार्य के लिए बड़े दिल रख करके जो कार्य करता है, तो बड़ी दिल रखने वाला जो है उसको भी भगवान उसका भंडारा भरपूर करता जाता है। जितना आप सोच सोच करके करेंगे तो देने वाला भी सोच सोच करके देगा, लेकिन बड़ी दिल से करो तो बाबा भी बड़ी दिल रख करके दुआओं से झोली भरता जाता है। तो बड़ी दिल से बड़ा कार्य में सहयोगी बन जाना, ये हमें दुआओं के पात्र बना देता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि यही समय है दुआएं कमाने का। सत्युग त्रेता में तो दुआएं कमाते ही नहीं, वो तो संगम युग के पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध पाया हुआ है और वो भोगना भोग रहे हैं, खुशी की सुख की भोगना भोग रहे हैं, आनंद की उत्साह की भोगना भोग रहे हैं, मना सुख की भोगना है। द्वापर कलयुग के अंदर दान किया और पुण्य कमाया, तो दान द्वारा हमने पुण्य कमा करके ये किया। संगम युग यही समय है दुआओं को कमाने का। सारा कल्प नहीं कमा सकते, सिर्फ यही समय है जब हम दुआएं कमा सकते हैं। दूसरी बात दादी जानकी हमेशा कहती है, जिसका मन स्वच्छ है, शुद्ध है, निर्मल है, उसको दुआएं मिलती है। जैसे दुनिया के अंदर भी आप देखो, कोई बहुत चालाक है और हर बार अगर चालाकी से चलता है तो क्या कहेंगे लोग, बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, पता ही नहीं चलता है, दो कदम दूर रहो उससे, नजदीक नहीं जाना, कहीं आपको ठोकर नहीं मार दे, कहेंगे ना। लेकिन कोई बहुत भोला हो, निर्मल हो, मन साफ हो, शुद्ध हो, मन में कोई मैल नहीं हो, उसके लिए क्या कहेंगे, ये भगवान का बंदा है, उसका मन भोलेनाथ की तरह एकदम भोला है, भोलेनाथ का बंदा है, यही कहा ना। और चालाक को क्या कहा, बड़ा खतरनाक है, चालाकी कहाँ करेगा, कैसे करेगा, आपको पता नहीं चलेगा, तो उसको खतरनाक कहा ना। तो दुआएं किसको मिलेगी, चालाक को या भोलेनाथ का बंदा जो है उसको, भोलेनाथ के बंदे को। तो क्या बनना चाहिए हमें, भोलेनाथ के बंदे बने ना हम भी, तो सहज ही भोलेनाथ की दुआएं भी हमें प्राप्त होती चले। तो जिसका मन स्वच्छ, बुद्धि स्पष्ट, वृत्ति श्रेष्ठ, भावनाएं निर्मल और संकल्प दृढ़, ये पांच बातें बहुत जरूरी है। मन स्वच्छ, बुद्धि स्पष्ट, भावनाएं निर्मल गंगा की तरह, वृत्ति श्रेष्ठ और संकल्पों में दृढ़ता, अगर स्वच्छ मन होगा तो संकल्पों में दृढ़ता आएगी। कई लोग कहते हम दृढ़ संकल्प कितनी बार लेते लेकिन दृढ़ता हमारी रहती नहीं है। कारण क्या? मन में कहीं खोट है। अगर मन स्वच्छ है, बुद्धि स्पष्ट है, वृत्ति श्रेष्ठ है, भावना निर्मल है, तो उसके संकल्पों में दृढ़ता स्वतः आ जाएगी, है ना? जो अंदर बाहर एक नहीं है, मैलापन है, वो दृढ़ संकल्पधारी बनेगा? वो बेपिंडी का लोटा हिलता रहेगा, कभी इधर लुढ़केगा, कभी उधर लुढ़केगा, कभी इधर लुढ़केगा, कभी उधर लुढ़केगा। इसलिए ऐसा मुझे बनना नहीं है। दुआओं का पात्र वही बनता है जिसके अंदर ये पांच बातें, ये दुआओं का पात्र हमें सहज बना देती है। दूसरी बात, जो दादी जानकी के साथ उस दिन हम बैठे थे, प्रश्न उत्तर कर रहे थे, तो दादी ने बहुत अच्छी बात सुनाई। आध्यात्मिकता किसको कहते हैं? आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? तो दादी ने कहा कि आध्यात्मिकता का मतलब है, पहली बात, पवित्रता। जहां पवित्रता होगी वहां सत्यता होगी, और सत्यता होगी तो निर्माणता होगी, नम्रता होगी, है ना? और नम्रता जहां होगी, पवित्रता सत्यता नम्रता जहां है, वहां मधुरता होगी, संबंधों में वाणी के अंदर सहज मधुरता आ जाएंगी, और तब उसके अंदर धैर्यता होगी। तो ये पांच बातें ही आध्यात्मिकता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये पांच बातें नहीं है वो आध्यात्मिक है ही नहीं। जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं रूहानी पर्सनालिटी बनाओ, तो रूहानी पर्सनालिटी किसको कहा जाए? अगर ये पांच बातें ही नहीं है, पवित्रता सत्यता धैर्यता नम्रता और मधुरता, ये पांच बातें ही ना हो तो उसको रूहानी पर्सनालिटी कहेंगे? सत्यता ही ना हो ये रूहानी पर्सनालिटी है? पवित्रता ना हो रूहानी पर्सनालिटी है? धैर्यता नहीं है रूहानी पर्सनालिटी है? अधीर्य, उतावलापना, अधीर्य, कभी क्या सोचेगा कभी क्या, वो रूहानी पर्सनालिटी कहेंगे क्या उसको? रूहानी पर्सनालिटी गंभीर, धैर्य, निर्माण, अहंकार नहीं उसके अंदर, अभिमान नहीं, सत्यता है, पवित्रता है। तो मधुरता उसकी वाणी में, मधुरता से, ये है रूहानी पर्सनालिटी। और जो ऐसे रूहानी पर्सनालिटी बन जाता है वो दुआओं का पात्र बनता है। रूहानी पर्सनालिटी न हो, आध्यात्मिकता न हो, आध्यात्मिकता खाली सुबह मुरली सुन लिया, अमृत वेले कर लिया, इससे आध्यात्मिक बन गए? नहीं, आध्यात्मिकता माना ये पांच बातें, ये पांच गुण, ये पांच गुण हर इंसान में जब दिखाई दे वो रूहानी पर्सनालिटी, वो आध्यात्मिक, उसको आध्यात्मिक मानते हैं। और जो ऐसे आध्यात्मिक है वो सुपात्र है दुआओं का। परमात्मा दुआएं उस पर सहज बरसती जाती है। दूसरा, दुआओं को प्राप्त करने के लिए जैसे बाबा हमेशा कहते हैं तीन सर्टिफिकेट आवश्यक है। तीन सर्टिफिकेट कौन से? स्वयं स्वयं से संतुष्ट, परिवार मुझसे संतुष्ट और बाबा मुझसे संतुष्ट। ये तीन सर्टिफिकेट जब मिलते हैं, ये तीन सर्टिफिकेट ही दुआएं, परमात्म दुआएं, अनेक आत्माओं की दुआएं, जब हमने संतुष्ट किया अपनी सेवाओं द्वारा, अपने जीवन की अपने जीवन की धारणाओं द्वारा संतुष्ट किया जहां, तब उनके अंदर से स्वतः दुआएं निकलती ही है। इसलिए बाबा कहते हैं ये तीन सर्टिफिकेट आवश्यक है, ब्राह्मण जीवन, और अगर ये तीन सर्टिफिकेट न हो तो ब्राह्मण जीवन का मतलब क्या हुआ। तो इसीलिए ये पांच बातों की धारणा जहां है वहां स्वयं स्वयं से संतुष्ट, लोग भी मुझसे संतुष्ट और परमात्मा भी मुझसे संतुष्ट हो जाए। तो एक ही बार में ये तीनों सर्टिफिकेट को बहुत सहजता से हम जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं। ये है दुआओं को प्राप्त करने का आधार। और एक बात, जो सदा खुश मिजाज रहते हैं, छोटी छोटी बातों में अगर फीलिंग में आ जाए, फीलिंग का फ्लू उसको लगा रहे, किसी ने कुछ कह दिया बस फीलिंग आ गई, दो दिन मुंह सूजा हुआ रहेगा, उसको दुआएं कोई देगा? लोग डरेंगे, भाई इसको कुछ नहीं कहो, उसको कुछ कहने गए और उल्टा समझ लिया तो दो दिन क्या, उसके कितने दिन तक अवस्था खराब रहेगी, इसलिए उसको कुछ कहो ही नहीं। अगर लोग मेरे से डरते रहेंगे तो मुझे दुआएं देंगे? देंगे। तो हमारा नेचर ऐसा फ्लेक्सिबल हो, इतना सरल और सहज हो, खुश मिजाज, किसी ने अगर कुछ कह भी दिया तो आप खुद भी आनंद लो उसका। आनंद इसलिए लो कि उसने ना समझी से कह दिया होगा, उसने जिस भी भाव से कहा, मैं उसको अपने मन पर लेकर के क्यों चलूं? मुझे बहुत अच्छी बात याद आती है। एक बार एक भाई था अपना बीके, उसको बड़ा बंधन था, तो बड़ा बंधन होने के कारण उसकी माता ने उसको इतना गाली दिया, मैं सुनती रही, काफी देर तक मैंने सुना, लेकिन ये भाई मुस्कुराता रहा और इतना सहजता से फिर दूसरे क्षण जाकर के उस माता को प्यार से बात करने लगा, मदद करने लगा। तो मैंने उसको कहा, इसने इतनी गाली दी आपको, आपको फीलिंग नहीं आई? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। मेरे जीवन उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, मेरे को भी फीलिंग आ जाती थी, कोई इतनी गाली दे मुझे तो हंसता मुंह रहे, खुश मिजाज रहे, ये नहीं हो सकता था। तो मैंने उस भाई से जब कहा, मैं तो उस समय बहुत, मैं समझती हूँ 18 साल की होगी मैंने, तो जब मैंने देखा इतनी गाली दे रहे, तो मैंने उसको पूछा, आपको फीलिंग नहीं आई, इसने इतनी गाली दी आपको फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं? तो कहा, बहन जी मैं एक ही बात सोचता हूँ कि इसने जो कुछ भी मुझे कहा ना, मैं ऐसा हूं ही नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ, अगर इसने मुझे कहा और मैं फीलिंग में आ जाऊं, इसका मतलब मैंने स्वीकार कर लिया और मैं सचमुच ऐसा हूं। तो उस समय मैं ये याद करता हूँ, मैंने कहा आप खुश कैसे रह सकते हैं? तो उसने बहुत अच्छी बात सुनाई कि उस समय मैं ये याद करता हूँ कि बाबा के वरदान याद करता हूँ, कि बाबा कहता है तू विशेष आत्मा है, तू महान आत्मा है, तुम परम पवित्र आत्मा है, तो उसकी गाली मुझे सुनाई नहीं देती है। वो कह रही थी तुम मूर्ख है, बुद्धू है, इतनी समझ नहीं है, नालायक है। तो कहा कि अगर मैं उन बातों को स्वीकार करूं और फीलिंग में आ जाऊं, तो इसका मतलब मैं सचमुच बुद्धू हूं, मूर्ख हूं, है ना, मैंने स्वीकार कर लिया ना। तो उस समय मैं याद करता हूं बाबा के वरदानों को कि मैं महान आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, तो मुझे उसके शब्द सुनाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए मैं खुश रहता हूं। तो एक कितनी अच्छी युक्ति मिल गई। उसके बाद मैंने भी समझा कि सचमुच जो बाबा कहते हैं वो मुझे फील होता है, जो बाबा ने मुझे टाइटल दिए मुझे वो फील करना चाहिए या जो दुनिया ने कहा वो फील करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो आज के बाद अगर किसी के शब्द सुनकर के आपको फीलिंग आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि आप वो है ना, आप वो तो नहीं है ना, आप महान आत्मा, विशेष आत्मा, भाग्यशाली आत्मा हो ना। तो उस समय कोई आपको अयोग्य शब्द कहे तो क्या याद करेंगे, क्या याद करेंगे? तो फीलिंग की बीमारी आएगी कि खुश मिजाज रहेंगे? तो उसके शब्द सुनने के बाद भी आप अपने नशे में, आप अपनी खुशी में रहो, फीलिंग में आकर के गुस्सा करना, उसको दो गाली और दे देना, ये ज्ञान है क्या? ये ज्ञान है हमारा कि किसी ने हमें बुरे शब्द कहे और हम गुस्से में आकर उसको चार बुरे शब्द कह दे, ये ज्ञान है? ये ज्ञान है? इसीलिए कोई अगर बुरा शब्द कह रहा हो उस वक्त ये याद करो कि भगवान ने मुझे क्या स्वमान दिया है, और उस स्वमान में अगर रहेंगे तो नशा चढ़ेगा, तो उसका शब्द का इफेक्ट दिमाग के ऊपर नहीं आएगा, फीलिंग में नहीं आएंगे, मूड ऑफ नहीं होगा, उदासी नहीं आएगी और सदा खुश मिजाज। और जो खुश रहता है उसके ऊपर स्वतः सबकी ब्लेसिंग्स होती है कि ये व्यक्ति है जिसको मैंने कितना कुछ कहा लेकिन फिर भी वो सदा खुश रहता है। तो खुश रहने वालों पर तो क्या होता है, अपने आप प्यार जागृत होगा। तो आज भले वो गाली दे रहे हैं, कल प्यार उत्पन्न होगा उसको, आपकी खुशी, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको भी परिवर्तन कर देगा। समझा? गुस्सा नहीं करना है। तो इसीलिए कई माता कहते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, कोई ऐसे वैसे शब्द बोल देते तो बहुत गुस्सा आता है, तो क्या करना है अभी? हाँ, भगवान के महावाक्य, जो श्रेष्ठ स्वमान हमें मिले हैं, ये स्वमान खाली भट्टी के दिनों के लिए ही थोड़ी है, खाली भट्टी के दिनों के लिए है, या यहाँ से जाने के बाद भी उस स्वमान में प्रैक्टिस करेंगे और आप देखेंगे जिस समय आप जो स्वमान लेंगे उस दिन विशेष उसका विपरीत कोई न कोई शब्द आपको सुनने को मिलेगा। परीक्षा तो लेगा ना भगवान कि नहीं लेगा? आपने जिस दिन स्वमान लिया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उस दिन गुस्सा दिलाने वाला कोई आएगा कि नहीं आएगा? आता ही है, परीक्षा तो तभी होती है ना भाई, स्वमान में आप कितना स्थित है तो भगवान भी परीक्षा तो लेगा कि नहीं लेगा। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं माया मेरी सबसे आज्ञाकारी बच्ची है ना। जिस दिन आप जो स्वमान लेते हैं ना, बाबा माया को कहते हैं देखो अभी टेस्ट करके आओ ये स्वमान में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, जब भी माया की ऐसी परीक्षा आए तो समझ लेना ये बाबा ने माया को भेजा है परीक्षा लेने के लिए कि ये कच्चा है कि पक्का है। दुनिया में एक मटका लेने जाते तो कितनी बार ठोकते, 100 बार ठोकते हैं ना, कच्चा है कि पक्का है, कच्चा चारों तरफ से देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो बाबा भी कहते हैं मुझे विश्व की बादशाही देना है तो कच्चे को दे देंगे क्या? कच्चे को देंगे? तो 100 बार ठोक ठोक करके तो देखेगा कि नहीं देखेगा? तो हर रोज जो स्वमान लेंगे उस स्वमान की परीक्षा आएगी या नहीं आएगी? तो दिन के अंत में अपना चार्ट देखते समय चेक करो कि आज मैं पास हुई या फेल हुई, क्या हुई ये देख लो, है ना। तो 100 बार ठोकेगी माया भी, चारों तरफ से ठोकेगी, है ना, तब। और हर परीक्षा में अगर पास हुए तो परमात्मा दुआएं सहज मिल जाएंगी। तो परमात्मा दुआएं मुझे लेना है क्योंकि उसी से हमारा जीवन सहज, सरल और सफल हो जाता है। बाप समान तभी हम बन जाते। बाबा को भी कितना गाली दिया लोगों ने, बाबा ने कभी गुस्सा किया? है ना। बाबा हमेशा ये कहते, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, कहते हैं ना बाबा भी। तो इसीलिए बाबा की कितनी भी लोगों ने निंदा की, लेकिन आज सारी दुनिया को झुका रहे हैं वही बाबा कि नहीं झुका रहे हैं? अगर उसी समय गुस्सा करते थे तो आज दुनिया को झुका सकते थे? इतने बाबा के बच्चे होते थे? नहीं होते थे। तो इसीलिए आपको भी अगर अपने परिवार वालों को झुकाना है तो क्या करना पड़ेगा? परिवार वालों की गाली ये नहीं सहन कर सकेंगे क्या? करके देखो, एक न एक दिन उनको भी झुका देंगे, आपके कदमों में झुकेंगे वो भी। लेकिन जब कोई अगर बुरे शब्द कहते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं, तो आप बाबा के शब्द को याद करके उनको फील करो, उस व्यक्ति के शब्द को फील नहीं करना है, तो पास हो जाएंगे। ठीक है? तो दुआओं का महत्व जीवन के अंदर बहुत।
अंतर मन छू जा जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे।